सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धादद्धमला विशुद्धबुद्धिलथ सौवथा तिहुवनशिरसे हरया पश्यन्तु भण्डारया सौवे तिहुवनभवनपसर्य पच्छक्खवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्तवणो अरहन्तदिवायरो जयौ तिरयणखगणिहाये णुत्तारिय मोहसेणशिरणिवहो आयिर्यराउपशिवौ परिवालिय भवियजियलो अन्नाणन्दयारे अणोरपारे भमन्तभवियाणं जो जेहि कौ पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहतिवति सा विनडिय तिहुवनभवियाण सुठुरायेण परिठवियाधमपवा सुजलवाणपयाणेन सन्धार्यशीलहरा उत्तार्यचिरपमाददुःशीलभरा साहू जयन्तु सौवे शिवसुहपः सण्ठियाहुनिगलिय भया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखे हुए है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड, उसमें कृति अनुयोग द्वार की बात चल रही है। यह हम पृष्ठ संख्या 87 पर आ गए, 87। 22 नंबर का सूत्र हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि उग्र तप जिनों को नमस्कार हो। उग्र तपो में भी दो भेद उन्होंने बताए हैं, उग्रोग्र तप और अवस्थित उग्र तप। उसमें हमने देखा था उग्रोग्र तप किसको कहना, कि एक उपवास फिर पारणा, फिर दो उपवास फिर पारणा, फिर तीन उपवास फिर यानी उपवास की संख्या बढ़ती चली जाएगी। बीच में एक एक दिन पारणा का होगा तो एक उपवास फिर दो फिर तीन फिर चार पाँच छः सात ऐसे बढ़ती चली जाएगी संख्या, उसको कहते हैं उग्रोग्र तप। ऐसे जीवन पर्यंत करते हैं तो उसका विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं। उसके लिए ऊपर जो सूत्र है उसको पहले हम पढ़ेंगे। उत्तर गुणिते तु धने पुनरपि अष्टाहते त्रिगुणमादिम उत्तर विशेषतम वर्गितम च योजानयेन्मूलम। अब ये सभी करण सूत्र पढ़ेंगे क्योंकि इसका अर्थ तो नहीं दिया है परंतु विशेषार्थ में कुछ बातें बताई हैं। आदिम त्रिगुणम मूला अपास्य शेषम च एन हतलब्धम सैकम दलितम च पदम शेषम तु धनम विनिर्दिष्टम मिश्रधने अष्टगुणे त्रिरूपवर्गेण संयुते मूलम मूलोर्धम च पदम शे शेषम तु धनम विनिर्दिष्टम। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इन तीन करण सूत्रों का पाठ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है जिससे उनका ठीक अर्थ नहीं बैठाया जा सका। जिन्होंने ये ट्रांसलेशन और विशेष उसमें बताया है भावार्थ वे लिखते हैं, किंतु उनमें जिस गणित की विवक्षा है वह स्पष्ट, वो स्व का स्प करना यानी यहाँ हमें संख्या निकालनी है, टोटल उपवास कितने हैं, टोटल कितने दिन हुए। जैसे एक उपवास एक पारणा, दो दिन बीते, फिर दो उपवास और एक पारणा, तीन दिन बीते, पहले दो और फिर तीन, पांच दिनों में तीन तो उपवास हुए और दो पारणा हुए। ऐसे आगे आगे उपवासों की संख्या बढ़ेगी, तो जो गणित है वह स्पष्ट है। गोमटसार जीव कांड की टीका पृष्ठ 120 आदि में उल्लिखित करण सूत्रों के अनुसार उपवास और पारणा के दिनों की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। अब ये पृष्ठ दिया है वो गोमटसार जीव कांड का दिया है, समय ज्ञान चंद्रिका का नहीं है। उसमें तो करण सूत्र बताए, वहां कुछ उपवास पारणा की बात वहां लिखी नहीं है। विशिष्ट गणित कैसे किया जाता है उसकी बात वहां लिखी है, वो यहाँ समझाए उन्होंने। मान लीजिए कि एक उग्रोग्र तपस्वी प्रतिपदा से प्रारंभ कर, प्रतिपदा पता है ना, एकम, एकम महीने का पहला दिन, मराठी में तो प्रतिपदा शब्द हाँ है, गुजराती वाले एकम कहते हैं ना, बीज, हाँ तीज, ऐसा तो एकम। प्रतिपदा से प्रारंभ कर यानी महीने के पहले दिन प्रारंभ हो गया, ये बताने के लिए कहेंगे ना कोई विशिष्ट, हम कहेंगे एक तारीख को किया उसकी बात नहीं, ये गिनने की बात चल रही है। फिर एकोत्तर वृद्धि, एकोत्तर वृद्धि का एक 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 से वृद्धि होती है, एक उत्तर वृद्धि यानी पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इसको एकोत्तर वृद्धि कहा। एकोत्तर वृद्धि क्रम से चतुर्दशी तक निम्न प्रकार से उपवास व प्रारणा करता है। उपवास के लिए वो लिखा और प्रारणा के लिए पा लिखा, क्योंकि वो अभी नीचे वो लिखकर समझाने वाले हैं। तो पहले क्या हुआ, एक उपवास एक प्रारणा, यानी दूसरे दिन प्रारणा हुआ। ये ऊपर जो एक दो तीन चार पांच क्रम से चौदह दिन बताए हैं, उसको प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी ऐसा कह सकते हैं, एकम बीज त्रिज वगैरह। उसके नीचे उपवास है या पारणा है उस दिन में वो बताया है। तो पहले दिन उपवास, दूसरे दिन पारणा, उसको एक संख्या लिखी। एक बार पारणा हुआ ना तो ये हो गया, अभी इसके आगे उपवास एक से बढ़ेगा। तो यहाँ दो उपवास, तीन और चार के नीचे दो बार उपवास लिखा और फिर पांचवें दिन पारणा हुआ, ये पूरे लॉट को दो संख्या लिख दी। फिर अभी तीसरा ग्रुप जो आया है उसमें तीन उपवास और एक पारणा है, यानी षट के लिए, सातम के लिए, आठम के लिए, नवमी के लिए, क्या है, तीन तो उपवास और एक पारणा, ये तीसरा लॉट हुआ, तीसरा समूह हुआ। चौथे में क्या लिखा, देखो 10, 11, 12, 13 के लिए उपवास चार हुए और चतुर्दशी को यानी चौदहवें दिन को पारणा हुआ, ये चौथा लॉट, चौथा समूह हुआ। तो ये एक एक समूह जो लिखा, नीचे जो लिखा है उसको पद कहेंगे, ऊपर के तो दिन हो गए, टोटल दिन, उसमें उपवास कितने पारणा कितने उसकी संख्या भी गणित के द्वारा बताएंगे। इसका सर्वधन या पदधन सर्वधन है, सब टोटल, पूरी टोटल सबकी मिलकर टोटल कितनी हुई, कितने दिन हुए, उसको सर्वधन कहा। मुह भूमि जोग दले पदगुणिदे पदधनम होदी, इस सूत्र के अनुसार हुआ। पद यानी जिसको हम गच्छ कहते हैं, बराबर है ना, तो अंतिम जो है उसमें कितने दिन है, चौथा जो समूह है पांच दिन है और पहला जो समूह है उसमें दो देखे हमने। तो अपना सूत्र क्या है, मुह भूमि जोग दले, मुह और भूमि जो लास्ट है उसमें से वो छोटा पहला वाला वो माइनस करना, तो पांच में से दो गए, सॉरी मुह जोग दले, जोग करना अभी एडिशन करना है क्योंकि हमको एवरेज निकालना ना। मुह भूमि जोग दले, जोग करना है ना उसका टोटल करना, और दले है ना उसका आधा करना। मुह भूमि जोग दले यानी वो अंतिम पांच दिन, शुरू के दो दिन, पांच दो सात हुए, और उसको दो से डिवाइड करना। फिर क्या करना, पद गुणी दे, पद यानी जो हमने एक लॉट, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, ये चार पद हो गए ना। पहले पद में दो है, दूसरे पद में तीन है, तीसरे पद में चार है, चौथे पद में पांच है, तो इन सबकी टोटल कितनी है, तो ये पदों की संख्या उससे गुणा करना। अपनी भाषा में क्या किया उन्होंने, जो लास्ट है उसकी संख्या, ये हम पेज नंबर 88 पर देख रहे हैं। उपवास और पारणाओं की बात चल रही है, उसमें जो एक दो तीन चार नीचे लिखा है वो तो पद है, बीच में उपवास है या पारणा है उसको लिखा है, और ऊपर उसके कितने दिनों में वो किया है उसकी बात लिखी है। तो पहले पद में दो संख्या है, दूसरे पद में तीन है, तीसरे में चार है, और चौथे में पांच है। तो इसकी सबकी टोटल निकालनी है हमको। तो इसकी टोटल निकालने के लिए क्या कहा, जो अंतिम और जो शुरू का, इनकी टोटल करना, पांच दो सात हुए उसका आधा करना, और उसको चार से गुणा करना, तो चौदह आ गए। ये मुंह है, ये भूमि है, कहीं कहीं उल्टा भी कहते हैं, मगर जो कुछ छोटा है बड़ा है उसकी अपेक्षा से वो कहेंगे। हाँ हाँ, भूमि। क्योंकि दिखाते समय भी पहले दो को लिया और फिर बाद में पांच को लिया ना, तो मुंह और भूमि इनकी टोटल की, उसका आधा किया। अपनी भाषा में क्या किया, शुरू का और लास्ट का लेकर उसको आधा किया यानी एवरेज निकाला, तो एवरेज कितना आया, साढ़े तीन, और इस संख्या कितनी, चार है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल संख्या आने वाली है। एवरेज निकाल के जितनी संख्या है उससे गुणा किया। हम उसको अलग भाषा में समझाते हैं, ख्याल है। तो ये पदधन है ने सर्वधन हुआ, सभी कितने दिनों में ये सारी बातें हुई, तो चौदह दिन उसकी संख्या आ गई। नहीं 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 नहीं, बढ़ते अंत तक, जीवन के अंत तक। पांचवें पद में पांच उपवास और एक पारणा होगा, एक एक पद में एक एक दिन भी बढ़ रहे हैं ना, दो तीन चार पांच छह, ऐसे दिनों की भी टोटल बढ़ती चली जाएगी। ये संकलन धन से भी निकलता है ना, दो से निकालना है, अभी पहला एक नहीं लिखना है, संकलन धन में हम एक को भी ऐड करते हैं। अभी संकलन धन अगर निकालेंगे उसमें से एक माइनस करेंगे, जैसे पांच का संकलन धन कितना आता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, पंद्रह आता है उसमें। इसमें हमने एक नहीं पकड़ा था क्योंकि एक उपवास और एक पारणा दो से ही शुरुआत होती है ना, तो वैसा भी उत्तर उसका चौदह आएगा। नहीं समझे, एक माइनस किया क्योंकि, हाँ क्योंकि एक उपवास पारणा में दो ही, दो के ही बात है, दो से ही हमने शुरुआत की है। एक से शुरुआत करते तो उसको हम कहते संकलन धन इतना है, और जितनी संख्या अभी लास्ट में पांच है तो उसमें समझना, उसमें से एक पारणा है और रिमेनिंग चार है उसके उपवास है, तो अधिक से अधिक कितने उपवास तक जाएगा, जैसे जितनी आयु है तब तक उसके ये उपवास का सिलसिला चलेगा, इतने उपवास और इतने पारणे। इस पद संख्या, इसमें पद संख्या अर्थात कितने बार उपवास और पारणाएं हुई इसकी गणना, अभी उसको कैसे निकाला, कितने बार पारणा हुए और कितने बार उपवास हुए, तो कहते हैं आदि अंते शुद्धे वड्ढयदे रूव संजुदे ठाणे, इस सूत्र के अनुसार हुई। आदि अंते शुद्धे यानी अभी वो दोनों का जो डिफरेंस है, आदि और अंत का, पांच माइनस दो लिया अभी यहां। रूव संजुदे वड्ढी दे, एक एक से बढ़ रहा है ना, तो उससे एक से गुणा किया, संख्या तो उतनी ही रहेगी, फिर रू व संजू दे, रू एन एक एक उसमें मिला देना, तो ठाण यानी पदों की संख्या आएगी। तो पांच में से दो गए, तीन रहे, तीन गुना एक तीन ही रहे, उसमें एक मिलाया तो चार, तो चार तो पद हुए। कितने बार उपवास, एक बार हुआ उसमें, भले वो एक उपवास उसमें दो हो या चार हो, हमने कितने बार ऐसा देखा। तो यहाँ हमने 14 दिन में चार बार हुए ना, ये चार वो पदों की संख्या होगी, यानी एक एक समूह अगर लेंगे तो वो चार हुए। हाँ तो चार पद है तो उसमें चार पारणा हो जाएंगे, और चार पद है और टोटल 14 दिन है तो 10 उपास हुए। पद माता चार पारणा ने, इन दो सूत्रों से पद को लेकर धन में से कम करने पर उपवास दिन होते हैं। क्या लेना, पद निकाले चार हुए और टोटल संख्या सर्वधन हमें मालूम है 14 है, 14 में से चार गए तो 10 उपवास हुए। पारणाएं पद प्रमाण होती है, ये गणित समझाया उन्होंने। अब शंका, ऐसा होने पर छह मासों से चाहिए ना, हाँ उसमें क्या है, मासों से चाहिए, क्योंकि ऊपर देखो, एवं संते छम मासे हिंतो वड्ढिमा उपवासा होंती। ऐसा होने पर छह मासों से अधिक उपवास हो जाते हैं, इस कारण यह घटित नहीं होता। उपवास बढ़ते 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 कितने हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कहते, आयु के अंत तक बढ़ोतरी ऐसे बताइए ना। तो छह मासों से अधिक उपवास हो जाते इस कारण यह घटित नहीं होता। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि घातायुष्क मुनियों के छह मासों के उपवास का नियम स्वीकार किया है, अघातायुष्क मुनियों के नहीं। ये घातायुष्क शब्द सुना था कहीं, कहाँ सुना था? क्यों कम हुआ? ऐसा है ना, बिगड़ गया क्या, बढ़ गया? हाँ, उनके गुणस्थानों से भी भ्रष्ट हो जाएंगे, या कोई तो यानी सम्यक तो बना रहेगा, तो फिर नीचे उसकी सम्यक तो बना रहेगा तो आधा सागर की अधिक आयु रहती है। और मिथ्या तो में मिथ्या दृष्टि का घातायुष्क होगा तो पल्ले से थोड़ा अधिक रहता है, उसना घातायुष्क यानी बढ़ोतरी कितनी होती है उसकी बात है। अब यहाँ ये देवों की बात नहीं है, वे तो देव घातायुष्कों की बात की, यहाँ तो मुनिराज घातायुष्कों की बात है। यानी हमारी जितनी एवरेज आयु होगी उससे उनकी ज्यादा होगी ना, घातायुष्क मुनिराजों की बात चल रही है, ऐसा ही लेना है ना। क्योंकि घातायुष्क तो वर्तमान आयु की बाबत है ही नहीं है, जो पहले बांध कर आए उसी को घातायुष्क कहेंगे, अभी जो घात होगा तो उसको कदली घात कहेंगे। परंतु ऐसी भी आयु होगी ना कि जो निरुपक्रम कहते हैं उसको, पहले ऐसी आयु बांधी है कि जो घट नहीं सकती है, उसको भी सोपक्रम और निरुपक्रम ऐसे नाम है। दो सोपक्रम और निरुपक्रम है, जैसे मनुष्य और तिर्यंचों में, वो भी कर्म भूमि में, भले आयु बांध कर आया है पूर्व कोटि की, परंतु ऐसा हो सकता है कि वो कदली घात होकर जल्दी मर जावे 25वें साल में। 25वें साल की बात क्या है, पर्याप्ति पूर्ण होकर अंतर्मूर्त में मर सकता है। इतनी पूर्व कोटि की आयु वाला भी एक साथ सब परमाणुओं की उदीर्णा होती है, वो कदली घात होता है और मर जाता है। परंतु ये मुनिराज ऐसे है कि ऐसी आयु बांधी है कि जिसमें वो कदली घात नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो कितने भी उपवास करे तो वे कदली घात से तो मरने वाले नहीं है। हाँ, निरुपक्रम। देखो क्या कहते हैं, शंकाकार को ऐसी शंका है ना, तो इतने उपवास हो जाए तो मर जाएंगे ना, यानी उससे अधिक नहीं हो सकेंगे, ऐसी शंका है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि घातायुष्क मुनियों के छह मासों के उपवास का नियम स्वीकार किया है। ऐसे कोई बड़ी आयु वाले हैं तो उनमें 6 मास का उपवास हो सकता है। अघातायुष्क मुनियों के नहीं, क्योंकि उनका अकाल में मरण नहीं होता। किसका? घातायुष्कों का अकाल में मरण नहीं होगा। ऐसा उसमें लिखा है स्पेशल? ऊपर क्या लिखा? न ऐसो दोसो घाता उदानम मुनिनम छम मासो वो वासनियम उप न अघाता उणम तेसीम अकाले मरण अभावादो। अघाता युष्क मुनियों में अकाल में मरण नहीं होता, ऐसा है क्या उसमें? स्वीकार किया गया है क्योंकि क्योंकि उनका अकाल में मरण नहीं होता। देखो उस आगे की शंका से पता चलेगा। अघातायुष्क भी 6 मास तक उपवास करने वाले ही होते हैं क्योंकि इसके आगे संकलेश भाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ घातायुष का अर्थ कुछ अलग किया है क्या? घात यानी जिसका घात हो सकता है वो घातायुष का कहे, ऐसा लगता है। यहाँ घातायुष का अलग अर्थ में आया है। अघातायुष कहने जिसका आयु का घात नहीं होता वो अघातायुष का कहे, और घातायुष कहने जिसको घात हो सकता है वो घातायुष का कहे। जो हम देवों में बताया था वैसा यहाँ अर्थ घटित नहीं हो रहा है। क्योंकि अकाल में मरण नहीं होता है ना, अघातायुष्क में आगे समाधान कहेंगे हम, देखेंगे। क्योंकि उनका अकाल में मरण नहीं होता है ना, अघातायुष्कों का अकाल में मरण नहीं होता। अकाल में किसका मरण नहीं होता? जिसको हम क्या कहते हैं, निरूपक क्रम वाले। पूरी आयु वो भोगेंगे, उनका पहले मरण नहीं होगा, उसको यहाँ अघातायुष्क कहा है। तो कहते हैं भले वो मरेंगे नहीं अघातायुष्क, फिर भी 6 महीने के बाद उनके भी संकलेश परिणाम हो जाएंगे, इसलिए उनका भी 6 मास के ज्यादा नहीं होगा, ऐसा यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं आगे वाली शंका। अघातायुष्क भी 6 मास तक उपवास करने वाले ही होते हैं क्योंकि इसके आगे संकलेश भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी भले उनका आयु का घात न हो तो भी वो उससे आगे उपवास नहीं कर सकते क्योंकि संकलेश भाव होते हैं, ऐसी शंकाकार की शंका है। समाधान इसके उत्तर में कहते हैं कि संकलेश सहित और सोपक्रमायुष्क मुनियों के लिए यह नियम भले ही हो। ये अभी सोपक्रम शब्द आया। सोपक्रम यानी जिसका घात हो सकता है वो सोपक्रम। क्या कहते हैं? संकलेश सहित जिनके संकलेश परिणाम हो जावे, और जो सोपक्रम आयुष्क जो मुनि है उनके लिए यह नियम भले ही हो कि 6 महीने का नियम भले ही आप कह सकते हैं, परंतु किंतु संकलेश भाव से रहित जिन्हें संकलेश परिणाम नहीं पाया जाता इतने उपवास होने पर भी, और निरूपक क्रमायुष्क जिनके आयु का कदली घात से समाप्ति नहीं होती उसको कहते हैं निरूप क्रमायुष्क। और कैसे है? निरूपक्रम आयुष्क। तप के बल से उत्पन्न हुए वीर्यांतराय के क्षोभशम से संयुक्त, उनका वीर्यांतराय का क्षोभशम होने से वो वीर्य बल अधिक है उनका, तथा उसके बल से ही यानी वीर्यांतराय के बल से ही यानी वीर्य के बल से ही असाता वेदनी के उदय को मंद कर चुकने वाले साधुओं के लिए यह नियम नहीं है। ये तप के बल से क्या हुआ है? उनका वीर्यांतराय का भी क्षोभशम बढ़ गया है, वीर्य बढ़ गया है, और उसी तप के बल से उसके यानी वो तप के बल से असाता वेदनी का उदय भी अत्यंत मंद हो गया है। हम देखते हैं तो जितनी अंतरंग में स्थिरता है तो उतना असाता का उदय मंद 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 होता जाता है। वो तो सम्यक दृष्टि के भी सम्यक दर्शन होने के पहले से ये क्रम शुरू हो गया है, आगे तो कितना उदय मंद मंद होता जाता है। इनके तप विशेष है, तो तप के बल से वीर्य भी बढ़ा है और असाता वेदनी का उदय भी मंद हो। ऐसे साधुओं के लिए यह नियम नहीं है, क्योंकि उनमें इसका विरोध है। यानी यहाँ जो घातायुष का शब्द आया है, मुझे ऐसा लगता है वो सोपक्रम निरुपक्रम के लिए ही आया होगा, नहीं तो घातायुष का किसको कहते हैं कि जो पहले बांधी हुई आयु की। क्योंकि स्वर्गों में घातायुष का कहते हैं, परंतु स्वर्गों में कदली घात नहीं कहते उसको, क्योंकि उनकी आयु ही बड़ी होती है। हाँ, ऐसा उसका उसके उससे ज्यादा नहीं है, ऐसा नियम उसके लिए स्वीकार किया। वही बात आगे कहे थे ना, संकलेश सहित और सोपक्रम, यानी संकलेश के कारण भी 6 महीने के बाद छूट जाएंगे, या जो सोपक्रम वाले हैं उनका भी घात हो जाएगा 6 महीने में। शंका तब क्या क्या फिर से? हाँ नहीं नहीं ऐसा कोई नियम नहीं कि कदली घात से मरने वाले के संकलेश परिणाम ही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा ही आयु बांध के आया है ना, तो इसी तरह से वो मरने वाले हैं। शंका तप के बल से ऐसी शक्ति किसी महाजन अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के उत्पन्न होती है, यह कैसे जाना जाता है? यानी किसी मुनिराज के ऐसे तप के बल से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, इसे कैसे जाना? समाधान, इसी सूत्र से यह जाना जाता है, क्योंकि 6 मासों से ऊपर उपवास का अभाव मानने पर उग्रोग्र तप नहीं बन सकता। हाँ, उससे ऊपर भी जाते हैं, 6 मास के ऊपर भी, 6 मास फिर एक पारणा फिर और 6 मास और एक दिन, उसके ऊपर भी होगा किसी के, तभी तो उग्रोग्र तप बन सकता है ना। आयु के अंत तक कहा है, और उनकी आयु भी वो निरुपक्रम वाली ली है, और तप के बल से उनकी शक्ति भी ऐसे बढ़ जाती है, ये भी कहा उसमें। दीक्षा के लिए एक उपवास करके पारणा करें, पश्चात एक दिन के अंतर से ऐसा करते हुए किसी निमित्त से षष्ठोपवास हो गया, फिर उस षष्ठोपवास से विहार करने वाले के अष्टमोपवास हो गया, इस प्रकार दशम द्वादशम आदि के क्रम से नीचे न गिरकर जो जीवन पर्यंत विहार करता है वह अवस्थित उग्रतप रिद्धि का धारक कहा जाता है। यानी वो नीचे उससे नीचे वाले उपवास नहीं करता, भले उतना ही उतना रहेगा या बड़े एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे, उसको उग्रतप सामान्य से अवस्थित उग्रतप कहा। यह भी तप का अनुष्ठान वीर्यांतराय के क्षोभ से होता है। उग्रोग्र में तो हमने हर बार वो एक एक बढ़ते हुए को लिया था। इन दोनों ही तपों का उत्कृष्ट फल मोक्ष है, अन्य अनुत्कृष्ट फल है। अन्य ने जो कुछ पुण्य वहां बंधेगा वो अनुत्कृष्ट फल है। इन उग्र तप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। आगे बढ़ते हम, नमो दीप्त तवाणम, दीप्त तप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। देखो ये अलग अलग रिद्धियों की बात आती है ना, अभी हमने बहुत सारी देखी थी, आकाशगामी देखी या वो 8 प्रकार देखे ना, अनिमा लगी महिमा वगैरह वगैरह, तो इसकी बहुत महिमा आती है हमको, अच्छा लगता है ना। कल एक बात आई थी अपने इसमें कि ज्ञान जानने की जो अपने में शक्ति है ये एक महान रिद्धि है, उसको तो हमने रिद्धि मानी ही नहीं ना। परमे कुछ करे, शरीर को हल्का भारी करे, आकाश में से गमन करे, चार अंगुल ऊपर से अधर से चले, तो ये हाँ क्या बढ़िया है, तो उसके महात्म्य आता है। हमें कल प्रवचन सार में था कि समय सार में आया था, समय सार में आता एक ज्ञान का होना ही एक महान रिद्धि है। आज देखना जब शाम के क्लास में फिर दोबारा। अब यहाँ कहते दीप्ति तप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। दीप्ति का कारण होने से तप दीप्त कहा जाता है। दीप्त है तप जिनका, वे दीप्त तप है। दीप्ति यानी वो तेज है ना, दीप्ति, दीप्ति शब्द सुना होगा आपने। हाँ, इसे ये दीप्त तप। चतुर्थ व षष्ठम आदि उपवासों के करने पर जिनका शरीरगत तेज तपजनित लब्धि के महात्म्य से प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान बढ़ता जाता है, वे ऋषि दीप्त तप कहलाते हैं। देखो ये उनका शरीर का तेज भी बढ़ता है। वैसे तो हम तो तेज बढ़ाने के लिए न जाने दिन में दो दो बार नहाते हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं, ऊपर और कुछ जो ब्लीच करने वाले कितने क्रीम लगाते हैं, तेज तो उससे नहीं बढ़ता है, ये उनके तप का बल है, उससे उनका तेज है। वैसे तो है वे अस्नान व्रतधारी मुनिराज, साबु क्या वो पानी से भी मुंह नहीं धोएंगे। चेहरा जो है या शरीर है वो कोई वहां स्नान की बात नहीं, फिर भी वे कैसे है, शरीरगत तेज प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान बढ़ता जाता है। वो तप की रिद्धि है, तप की लब्धि है, उसके कारण ये बढ़ता है। वे ऋषि दीप्त तप कहलाते हैं। उनकी केवल दीप्ति ही नहीं बढ़ती किंतु बल भी बढ़ता है, क्योंकि शरीर बल, मांस और रुधिर की वृद्धि के बिना शरीर दीप्ति की वृद्धि हो नहीं सकती। क्या कहते हैं, शरीर बल बढ़े बिना तेज नहीं आ सकता, मांस और रुधिर भी बढ़े बिना शरीर में तेज नहीं दिखेगा, है ना। तो ये करते तो उपवास है और ये बल भी बढ़ता है, और जो कुछ क्योंकि तेजस्वी दिखते नहीं, क्या है, मांस रुधिर की वृद्धि के बिना शरीर दीप्ति की वृद्धि हो नहीं सकती। इसीलिए उनके आहार भी नहीं होता क्योंकि उसके कारणों का अभाव है। यदि कहा जाए कि भूख के दुख को शांत करने के लिए वे भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि भूख के दुख का अभाव है। ये अभी देखा ना हमने, असाता वेदनीय के तीव्र उदय से वो भूख भीख लगती, उदीर्णा से। तो यहाँ तो कहते हैं उनके भूख का भी अभाव हो जाता है। शंका, उसका अभाव कहाँ से जाना जाता है। समाधान, दीप्ति बल और शरीर की वृद्धि से वह जाना जाता है। हमने तो ऐसा ही मान लिया कि जितना अधिक खाए उतना अधिक बल बढ़े, उतना अधिक तेजस्वी हो गए। ये हर एक माताओं को पूछना चाहिए, ये अपने बच्चों को इतना खिला पिला कर मोटा बनना चाहते हैं। रात में 8 घंटा सोना भी, बच्चा छोटा बच्चा सोएगा तो नींद में भी जगा जगा कर 3-3 घंटे में दूध पिलाएंगे, और आजकल डॉक्टर भी वैसा उपदेश देते हैं। देखो ये 24 नंबर, नमो तत्त तवाणम, तप्त तप रिद्धि धारकों को नमस्कार हो। जिस तप के द्वारा मूत्र मल और शुक्रादि तप्त अर्थात दग्ध व विनष्ट कर दिया जाता है, वे उपचार से तप्त तप कहलाते हैं। तप्त हो गया है तप जिनका, वे तप्त तप वाले हैं। जिनके ग्रहण किए हुए 4 प्रकार के आहार का तपे हुए लोह पिंड द्वारा आकृष्ट पानी के समान निहार नहीं होता, वे तप्त तप रिद्धि के धारक जिन हैं। क्या कहने चाहते, 4 प्रकार के आहार कौन से पता है ना? हाँ, वो कौला, वो आहार 4 प्रकार, वो 4 नहीं, हाँ, खाद्य पेय स्वाद और लेय, स्वाद्य और लेय, चौविहार करते हैं ना, चौविहार करते हैं ना क्या, 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। ये कौन से, ये खाद्य पेय यानी खाने की चीजें, पीने की चीजें, स्वाध्याय ने वो जो हाँ मुखवास 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 में सारा है, सुपारी बड़ी शेप तम्बाकू जो कुछ है वो सब वैसे तम्बाकू खाने योग्य नहीं परंतु न जाने वो पान खाओ क्या क्या चबाते रहते हैं ना। स्वाध्याय और ले यानी एप्लीकेबल, लेप जिसको कहते हैं, हाँ बाम होगा, तेल होगा, तेल से मालिश होगी, जो कुछ है ये चारों ही प्रकार का आहार। अब उसके लिए उदाहरण दृष्टांत कैसे दिया, आपने शायद कभी देखा होगा, पानी रखी आप बर्तन में और ये लोहे की उल्थनी वो एकदम गरम 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 करना और उसमें डुबो दो तो पूरा ही उसमें बहुत ऐसे खतखत खत आवाज करके क्या होता है वो पानी उसमें ऐसा आता है, देखो तपे हुए लोह पुण्य द्वारा आकृष्ट पानी के समान वो पानी उसमें एकदम खींचा चला जाता है। तो उसके समान निहार नहीं होता, आहार तो है परंतु निहार नहीं है, ये तप के द्वारा नहीं है। ऐसे अन्य भी होते हैं जिनको आहार है और निहार नहीं, अरविंद भाई को पता है, बताओ बोलो। तीर्थंकर के जो जीव है गृहस्थ अवस्था में, मुनि बालक भी है वो, तभी की बात है, और बलभद्र को नहीं होता है, तीर्थंकरों के माता पिताओं को भी नहीं होता है, ऐसा है, जन्म से ही होता है। भोगभूमि में भी ऐसा है ना, हाँ हाँ देवनारकियों को भी है। ये कहते हैं उसकी लिस्ट है, उसमें पुस्तकों में सब कुछ है, अभी हमारे याद में कुछ नहीं रहता ना, फिर भी कुछ बहुत कुछ याद है आपको, परंतु ये तप के द्वारा इनकी बातें हो गई। वे तप्त तप रिद्धि के धारक जिन है, इस रिद्धि से सहित तप्त तप वाले जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। नमो महातवाणम, महातप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, जो अणिमादि 8 गुणों से सहित है, जलचारणादि 8 प्रकार के चारण गुणों से अलंकृत है, अणिमादि 8 गुण भी है वो, जलचारणादि 8 चारण गुण भी है, प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त है, दो प्रकार की अक्षीण रिद्धि से युक्त है। ये अक्षीण रिद्धि की बात आएगी आगे। सर्वौषधि स्वरूप है, पानी पात्र में गिरे हुए सब आहारों को अमृत स्वरूप से पलटाने में समर्थ है। पानी पात्र किसको कहते मालूम है प्रेरणा भे, आपको पता है? हाँ देवेंद्र भाई, मयंक भाई आप जानते हैं, हाँ, पानी यानी हाथ, पानी ग्रहण किया है ना ये बुद्धों के होते हैं ना ऐसे, तो दो बाजू दो ऐसे, उसको चक्रपाणी कहते हैं। आपने नाम सुना है? नहीं, चक्रपाणी नाम सुना होगा, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहते हैं। ये पानी हाँ कृष्ण को भी नाम है और दूसरे भी वो बौद्धों में ऐसे वो यक्ष जैसे दिखाते हैं ना दो बाजू, उसको भी कहते चक्रपाणी। पानी यानी हाथ, ये कर पात्र भी कहते ना, ये पानी पात्र का, पानी पात्र में गिरे हुए यानी वो आहार दान देते समय हाथ में जो कुछ आहार जिसे रूखा सूखा कुछ भी हो फिर भी वो कैसे अमृत समान हो जाता है, सब आहारों को अमृत स्वरूप से पलटाने में समर्थ है। समस्त इंद्रों से भी अनंत गुण बल के धारक है, एक दो इंद्र की बात नहीं है, एक इंद्र की इतनी शक्ति तो समस्त इंद्रों की कितनी होगी, तो समस्त इंद्रों से भी अनंत गुणे बल के, अनंत कहा हो, आशीर विष और दृष्टि विष लब्धियों से समन्वित है। सभी तप और लब्धि रिद्धियां ले लिए यहाँ, तप रिद्धि से संयुक्त है, समस्त विद्याओं का धारक है, मति शुत अवधि एवं मन परे ज्ञानों से तीनों लोक के व्यापार को जानने वाला है, वह मुनि महातप रिद्धि का धारक है। ये सभी रिद्धियां है इनको, चार ज्ञान भी है, सब विद्याएं भी है। कारण कि महत्व के हेतुभूत तप विशेष को उपचार से महान कहा जाता है। वह जिनके होता है वे महातप ऋषि है ऐसा सिद्ध है। अथवा महस अर्थात तेजों का हेतुभूत जो तप है वह उपचार से महा होता है, शेष सुगम है। इन महातप ऋद्धि धारकों को चाहिए। मन वचन व काय से नमस्कार करता हूँ। अब 26 नंबर का सूत्र। नमो घोर तवाणम। घोर तप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। पहले कौन सा था? महातप था ना, महातप रिद्धि धारक। अभी ये घोर तप रिद्धि धारक है। उपवासों में 6 मास का उपवास, अवमोदर्य तपो में 1 ग्रास। अवमोदर्य का अर्थ मालूम है आपको? हाँ, ऊनोदर भी जिसको कहते हैं, यानी भूख से कम खाना, तो खाली 1 ग्रास ही खाना। इसको अवदर में उसकी लिमिट मैक्सिमम बताइए। मैक्सिमम यानी कम से कम कितना खाते हैं और छोड़ देते, फिर भोजन के लिए आएंगे 1 ग्रास में छोड़ देंगे, तो उसको कहते अवमोदर्य तपो में 1 ग्रास। उपवासों में अधिक से अधिक 6 मास का उपवास लिया, अवमोदर्य में 1 ग्रास। वृत्ति परिसंख्याओं में चत्वर अर्थात 84 में भिक्षा की प्रतिज्ञा, रस परित्यागों में उष्ण जलयुक्त ओदन का भोजन, विविक्त शय्यासनों में वृक व्याघ्र तरक्ष छवल्ल आदि श्वापद अर्थात हिंस्र जीवों से सेवित, सह्य और विंध्य आदि अटवियों में निवास। सह्य ने सह्याद्री पर्वत और विंध्य ने विंध्य पर्वत, उसके अटवी ने वन अरण्य जंगल, भयानक अटवी कहने में आते हैं, उसमें निवास। और वे भी कैसे? वृक व्याघ्र तरक्ष छवल्ल जो हिंस्र श्वापद कहने में आते हैं, वो जहाँ उनका निवास रहता है, वाघ सिंह आदि, उनके बीच में कहने से उनसे सेवित ऐसा जो जंगल है, उनके द्वारा जहाँ उनका ठिकाना है रहने का, निवास होता है, सेवित यानी उनका निवास स्थान, ऐसे जो जंगल होते हैं वहाँ ये रहते हैं। देखो वृत्ति परिसंख्यान में क्या कि कुछ मन में विशिष्ट बात लेके लेते हैं, तो उसमें कठिन में कठिन क्या है? तो 84 में आहार मिले तो लूंगा ऐसा। 84 ने अभी हम कहते ना जहाँ स्ट्रीट, हाँ, 4 रास्ते मिलते हैं, अभी वहाँ जैसे कैसे मिलेगा वैसे। हाँ, यानी कठिन से कठिन का घोर तप इसीलिए कहा ना, जो कठिन से कठिन है उसकी सब ली और उसकी लिमिट बता दी कहाँ तक की। काय क्लेशों में जहाँ तीव्र ठंडक हो तथा तीव्र गर्मी पड़ती हो, ऐसे प्रदेशों में तथा खुले आकाश अथवा वृक्ष मूल में आतापन योग ग्रहण करना। जहाँ तीव्र ठंडी है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ठंडी के दिन में सरोवर के किनारे, या बहुत ज्येष्ठ का महीना है या मई महीना है समझो, तो पर्वत के टोच पर, शिखर पर, शिला पर, वो भी गर्म हो जाती है ना, मिट्टी नहीं होगी इतनी, वो पत्थर गर्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर जाके बैठेंगे। क्या क्या? वृक्ष के खुले आकाश, ऊपर देखो क्या है, काय किले से तीव हिम बाला दावणीव दंत विषयेषु अभोवास रुख मूला दावण जोग गणम। वृक्ष के खुले आकाश में कोई उसमें लिखा होगा मगर उसका कोई अर्थ नहीं, उसका अर्थ नहीं भाषित है। वृक्ष के खुले आकाश में कुछ उसका अर्थ भाषित नहीं होगा, उसमें तो लिखा है वृक्ष के खुले आकाश। आतापन योग यानी अभी यहाँ से वहाँ न हिलने की प्रतिज्ञा करके वहाँ तिष्ठते हैं ना, ध्यान लगाकर बैठेंगे, उसको आतापन योग कहते हैं। तो वृक्ष के मूल में या खुले आकाश, हाँ, तीव्र ठंडी तीव्र गर्मी, खुला आकाश या वृक्ष मूल में, पहले तो उन्होंने कहाँ रहते वो, ये सारा इसमें आ गए ना, काय क्लेश में ही आ गए चार बातें। विविक्त शय्यासन में ऊपर की आई थी, हाँ ये छह तपों की बात है, हाँ उसको छह बराबर है, उपवास अमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, और सब में अधिक से अधिक उग्र तप या घोर तप की अपेक्षा से उसकी बताए। हाँ इसी प्रकार अब ये तो बाह्य तपों की बात हुई, अभ्यंतर तपों में भी उत्कृष्ट तप की प्ररूपणा करना चाहिए। वह 12 प्रकार ही तप कायर जनों को भयोत्पादक है, इसी कारण घोर तप कहलाता है, कायर जनों के लिए वो भयप्रद है। वह तप जिनके होता है वे घोर तप रिद्धि के धारक है। 12 प्रकार के तपों की उत्कृष्ट अवस्था में वर्तमान साधु घोर तप कहलाते हैं। यह तात्पर्य है, यह भी तप जनित रिद्धि ही है, क्योंकि बिना तप के इस प्रकार का आचरण बन नहीं सकता। वो केवल वहां गिनीज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा उसके लिए नहीं कर रहे, वो करते हुए उनके अंतरंग में स्थिरता जो है वो बढ़ती है, वहाँ उनका चारित्र है। यानी पहले भी एक बात आई कि तीन गुप्तियों से सहित उसका रक्षण करते हुए ये बातें होती है उनकी। इन घोर तप ऋषिश्वरों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। नमो घोर पर कमाणम, घोर पराक्रम रिद्धिधारक जिनों को नमस्कार हो। सिद्ध चक्र विधान जिसने किया है सुना है उसको ये सारे उसमें अर्घ किए अर्घ्य दिए, घोर तप वालों को, महा घोर तप वालों को, घोर रिद्धि वालों को, ये सब नाम ले लेके वहां भी सबको अर्घ्य है। देखो अभी घोर पराक्रम की बात करें, घोर पराक्रम रिद्धिधारक जिनों को नमस्कार हो, तीनों लोकों का उपसंहार करने, पृथ्वी तल को निगलने, समस्त समुद्र के जल को सुखाने तथा जल अग्नि एवं शिला पर्वत आदि के बरसाने की शक्ति का नाम घोर पराक्रम है। इतना उनमें शक्ति है वो कभी इसका यूटिलाइजेशन करने वाले नहीं है। घोर है पराक्रम जिनों का, वे घोर पराक्रम कहलाते हैं, उनको नमस्कार हो, यह अभिप्राय है। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आने से क्रूर कर्म करने वाले असुरों को नमस्कार करने का प्रसंग नहीं आता, क्योंकि ऐसी बातें तो ये असुर आदि भी करते हैं ना, किसी गांव को उपद्रव करना, कुछ कुछ शिलाएं गिराना वगैरह, परंतु ये मुनिराज है, जिन शब्द आया उसमें उनके ऐसी कोई भाव होते नहीं है, क्योंकि इस सूत्र में जिन पद की अनुवृत्ति हो जाती है। नमो घोर गुणानम, घोर गुण जिनों को नमस्कार हो। घोर अर्थात रौद्र है गुण जिनके, वे घोर गुण कहे जाते हैं। शंका, 84 लाख गुणों के घोरत्व कैसे संभव है? ये मुनिराजों के 84 लाख उत्तर गुण कहे जाते हैं। ये उसके कॉम्बिनेशन सगे कितने होते हैं सब मिलकर, उसको ये 84 लाख बताए। उसमें वो 10 धर्म वगैरह वगैरह उनकी जितनी सारे जो मुनियों के हैं ना, वो सबका आपस में गुणा कर, हम कहते हैं ना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस कितने हैं, जैसे प्रमाद के वेदों के कैसे हमने निकाले थे, वैसे ये 84 लाख भी निकलते। 18,000 शील के वेद और 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। तो जिनके ऐसे है उनको ये घोरत्व कैसे संभव है? समाधान, घोर कार्यकारी शक्ति को उत्पन्न करने के कारण उनके घोरत्व संभव है। उन घोर गुण जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। जिन शब्द की अनिवृत्ति होने से यहां अति प्रसंग भी नहीं आता। अनिवृत्ति का अर्थ क्या है? हाँ, अनुवृत्ति चाहिए थी ना। अनु चाहिए ऊपर भी, जिनाणु वृत्ति दो, अनुवृत्ति। गुण और पराक्रम के एकत्व नहीं है। पहले घोर पराक्रम कहा था, अब यहां घोर गुण लिखा है, इसलिए ये अलग अलग है। गुण और पराक्रम के एकत्व नहीं है क्योंकि गुण से उत्पन्न हुई शक्ति की पराक्रम संज्ञा है, इसलिए दो अलग अलग लिख के सूत्र दो अलग बनाए। अब 29 नंबर का, नमो अघोर गुण बंबचारिणम। ये नमो के बाद जो ऐसा एस जैसा है ना चिन्ह, हाँ, तो उसका अर्थ होता है बीच में अ आता है तो उसका ऐसा चिन्ह हो जाता है और अ का लोप हो जाता है। ये संस्कृत का नियम है, संस्कृत प्राकृत में। तो यहाँ नमो घोर गुण नहीं कहना, घोर गुण तो हो गए, अभी अघोर गुण है। तो नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, अघोर गुण ब्रह्मचारी जिनों को नमस्कार हो। देखो ब्रह्मचर्य जब हम कहते हैं ये ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, तो हमारा लक्ष्य कहाँ जाता है? रे इसने शादी नहीं की है, हा? तो छोटेपन से ही ब्रह्मचर्य पाला है। परंतु ब्रह्मचर्य किसको कहना? ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। आत्मा में जो चरना है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जिसके ऐसे आत्मा में चरना होता है उसके बाह्य में भी ऐसे भाव सहज ही रहते ही हैं। तो हमने तो उसको बहुत लिमिटेड अर्थ बना दिया उसका। आज ही पूजा में बात आई थी ना, वो पुष्प के छंद में आई थी, वो वितराग पूजन में। देखो ब्रह्म का अर्थ 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप चारित्र है। चारित्र नहीं चरना, ब्रह्मचर्य शब्द है ना आगे, यहाँ तो ब्रह्म के ही अर्थ में ये सब आ गया। क्योंकि वह शांति के पोषण का हेतु है। अघोर अर्थात शांत है गुण जिसमें, वह अघोर गुण है। पहले घोर का अर्थ रौद्र किया था ना, अब यहाँ अघोर यानी शांत। अघोर गुण ब्रह्म का आचरण करने वाले अघोर गुण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। आचरण इसलिए ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण वो ब्रह्मचारी। अघोर गुण यानी शांत गुण जिसको कहे, ऐसे जो ब्रह्म है उसका आचरण करने वाले यानी जो चारित्र में स्थिर है, इसे अघोर गुण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। जिनके तप के प्रभाव से डमरी इति रोग दुर्भिक्ष वैर कलह वध बंधन, वो बंधन हुआ है बंधन, और रोध आदि को शांत करने की शक्ति उत्पन्न हुई है, वे अघोर गुण ब्रह्मचारी है, यह तात्पर्य है। यानी कोई संकट आते हैं, हाँ, डमरी का मुझे भी पता नहीं, डमरी दी मारी, मारी यानी कोई जो रोग आता है ना, कॉलरा जैसे कोई जो एपिडेमिक्स आते हैं उसको ये मारी कहते, या मरी, मरी भी कहते ना उसको, मरी का रोग हुआ, मारी है, महामारी भी कहते हैं। दुर्भिक्ष ने दुकाल, दुकाल पड़ता है। कलह वध बंधन रोध यानी क्रोध आदि, उसको शांत करने की शक्ति उत्पन्न हुई। डमरी का अर्थ मुझे भी नहीं, अच्छा उसको कहते हैं डमरी, हाँ चक्रीवादल, हाँ साइक्लोन, हाँ वही वो वाउटर जिसको कहते हैं मराठी में, ऐसे गोल घूमता है। हाँ ये कोई भी ऐसे जो संकट आते हैं, हाँ ये अकेले रोग की बात नहीं है, अभी दुर्भिक्ष रोग थोड़ा ही है। हाँ डमरी अलग और इति अलग, उसमें एक कॉमा देना चाहिए। हाँ ये पहले भी हमने देते इति भीति डमरी, वो दमरी रूकन भाग बिकाए, वो दमरी यानी दमड़ी, दमड़ी यानी पहले पहले आता था ना, पैसा आता था और पैसे का भी वो पई आती थी, उसको दमड़ी, दमड़ी कहते, दमड़ी मोल। तो दमड़ी रूकन, दमड़ी यानी दमरी रूकन भाग बिकायो, यानी ऐसी पर्याय पाई, जैसे मूली वगैरह आते, जैसे भाजी सब्जी लेते हैं तो ऊपर फ्री में दे देने, जैसे लहसुन प्याज या मूली ऐसा फ्री में दे दिया, ऐसे दमरी रूकन भाग बिकायो, दमरी के मोल बेचा गया, ऐसा कहते हैं। हाँ चलो चलो अभी आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं अलग अलग है, डमरी डमरी दी, अच्छा अच्छा डमरी दी इति, वहाँ डमरी दी लिखा, डमरी दी मारी दुब्बिक वैर कल रोहादी, डमरी थी लिखा, एक शब्द लिया उन्होंने डमरी थी। अभी शंका पढ़ेंगे। नमो घोर गुण बंभचारिणम, इस सूत्र में अघोर शब्द का अकार क्यों नहीं सुना जाता, लिखा नहीं ना, नमो घोर गुण बंभचारिणम। समाधान, संधियुक्त निर्देश होने से उक्त आकार का यहाँ श्रवण नहीं होता। पहले बात है ना, ऊपर तो चिन्ह रख दिया है, परंतु ऐसे भी नमो घोर ऐसा उसका सुनाई नहीं देगा वो। शंका, दृष्टि अमृत और अघोर गुण ब्रह्मचारी में क्या भेद है? पहले हमने दृष्टि विष वाले लिए थे, दृष्टि विष और दृष्टि अमृत दोनों की बात की, उनके देखने मात्र से वो सामने के उसको कोई संकट है उसका निवारण हो जाता है, जैसे विष है तो निर्विष हो जाता है, आदि आदि बातें हमने देखी थी। उसका समाधान, उपयोग की सहायता युक्त दृष्टि में स्थित लब्धि से संयुक्त दृष्टि विष कहलाते हैं, किंतु अघोर गुण ब्रह्मचारियों की लब्धियां सर्वांगगत असंख्यात है। यहां वो दृष्टि में स्थित लब्धि है और यहाँ सर्वांगगत है वो लब्धियां और असंख्यात है। इनके शरीर से स्पृष्ट वायु में भी समस्त उपद्रवों को नष्ट करने की शक्ति देखी जाती है। ये ऊपर जो अलग अलग नाम गिनाए हैं उसको उपद्रव कह सकते हम, इस कारण दोनों में भेद है। मेरे ख्याल से वो टोल टोलधाड़ वगैरह कहते ना उसको इति कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, डमरी दी उसकी भी बात हो सकती है, पता नहीं। चलो जो कुछ है, विशेष इतना है कि अशुभ लब्धियों की प्रवृत्ति लब्धियुक्त जीवों की इच्छा के वश से होती है, किंतु शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकारों से संभव है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना भी उक्त लब्धियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या कहते हैं, अशुभ लब्धियाँ है कोई, जैसे सामने वाला मर भी जाए उसकी दृष्टि से, तो वो तो उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे नहीं, परंतु उनमें वो पावर है ऐसा बताने के लिए क्या कहते हैं कि उनमें इच्छा के वश से उसकी, जैसे अभी अशुभ तेजोलेशा की बात है ना, तेजस समुद्घात, तो उसमें क्या होता है, वो मुनिराज इच्छा से वो उसकी यूटिलाइजेशन होती, परंतु यहाँ क्या बात है, शुभ लब्धियाँ जो है अभी क्या बात देखें, शरीर से स्पृष्ट वायु में भी उनको शरीर का स्पर्श करके वो वायु आया, सामने कोई रोगी है तो उसका रोग नष्ट हो जाएगा, तो वहाँ इसका मैं रोग दूर करूँ ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा से भी होगा और बिना इच्छा के भी होगा, ये बात बता रहे। शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकार उनसे संभव है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना भी उक्त लब्धियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। नमो आमोस ही पत्ताणम आमर्ष औषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो। अने आमर्ष औषधि जिनका आमर्ष अर्थात स्पर्श औषधपने को प्राप्त है, वे आमर्ष औषधि प्राप्त है। शंका, सूत्र में सकार क्यों नहीं सुना जाता है? समाधान, प्राकृत में किन्हीं पदों के आदि मध्य व अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है, इस व्याकरण के नियम से सकार का लोप हो गया अतः वह सुना नहीं जाता। हाँ हाँ आमोस देखो वहां क्या लिखा है, आमोस ही पत्तानम, ओस ही यानी औषधि और आम इतना ही किया, आमोस सो कैसे होना चाहिए था, आमर्ष चाहिए ना, आमस ओस ही पत्तानम, प्राकृत में कैसा होना चाहिए था, आमसोस ही पत्तानम, आमस औषधि पत्तानम यानी आमसोस ही पत्तानम ऐसा होना चाहिए था, परंतु वो सो सुना ही नहीं दिया, आमस के बदले में आमोस ही पत्तानम कर दिया, शब्द कैसे आमोस आमस होना चाहिए था, ये स्वर का लोप हो जाता है। शंका, औषधि में इकार कहां से आया, औषध चाहिए उसमें औषधि क्यों कहा, समझ में आया उसका प्रश्न, औषध होना चाहिए, औषधि कैसे कहते उसको, वैसे हमारी भी भाषा में हम औषधि कहते हैं, इसकी औषधि है ऐसा भी कहते हैं, औषधि भी कहते हैं। अ आ ई ऊ ये छह स्वर समान है तथा ए और ओ ये दो संधि अक्षर ये आठों स्वर बिना विरोध के एक दूसरे के स्थान में आदेश को प्राप्त होते हैं, यानी एक के बदले वो दूसरा वहाँ स्वर आ जाए तो उसमें कोई बात नहीं है, औषध के बदले औषधि आए तो ये हो सकता है, इस व्याकरण के नियम से औषधि यहाँ अकार के स्थान में इकार हो गया है, औषध के बदले औषधि हो गया, उसमें कोई विरोध नहीं है। विशेषार्थ, यद्यपि संस्कृत में औषधि और औषध दोनों शब्द है तथापि यहाँ केवल औषधि समूह रूप औषध शब्द से अभिप्राय होने के कारण उक्त प्रकार समाधान किया गया है। तप के प्रभाव से जिनका स्पर्श समस्त औषधों के स्वरूप को प्राप्त हो गया है, समस्त औषधों उसका समूह कहा ना अभी उन्होंने, उनकी आमर्ष औषधि प्राप्त ऐसी संज्ञा है। इस प्रकार के आमर्ष औषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। इनका अघोर गुण ब्रह्मचारियों में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि इनके केवल व्याधि के नष्ट करने में ही शक्ति देखी जाती है। वो अघोर गुण ब्रह्मचारियों में सभी उपद्रव नष्ट करने की शक्ति थी उसमें। नमो खेलो सही पत्ताणम, खेल औषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो। श्लेष्म, लार, सिंहाण अर्थात नासिकामल, विप्रुष आदि की खेल संज्ञा है, जिनका यह खेल औषधित्व को प्राप्त हो गया है, वे खेल औषधि प्राप्त ऋषि है। यानी जिसको हम शरीर के मल कहते हैं ना, श्लेष्म, श्लेष्म कफ जो श्लेष्म, ये नासिका का मल अलग लिया है, लार यानी लाल, सिहान यानी नासिका मल, विप्रुष आदि की खेल संज्ञा है, जिनका यह खेल औषधित्व को प्राप्त हो गया, वे खेल औषधि प्राप्त ऋषि है। उन खेल औषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। नमो जल्लो सही पत्ताणम, जल्लौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। बाह्य अंगमल जल्ल कहलाता है, शरीर के ऊपर जो मल है वो उसको जल्ल जल्ल कहा। वह तप के प्रभाव से जिनके औषधि पने को प्राप्त हो गया है, वह जल्लौषधि प्राप्त जिन है, उन जल्लौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। नमो विठो सही पत्ताणम, विष्ठौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। विष्ठा शब्द चूंकि देशामर्शक है, अतएव उससे मूत्र, मल और शुक्र का ग्रहण होता है। हम केवल मल को ही विष्ठा कहते, परंतु यहाँ तीनों को लिया। ये जिनके औषधित्व को प्राप्त हो गए हैं, वे विष्ठौषधि प्राप्त जिन हैं, उन विष्ठौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। नमो सवो सही पत्ताणम, सर्वौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि यानी अस्थि, अस्थि कैसा कहा, अस्थि चाहिए, अस्थि अस्थि यानी उनके हड्डी, मज्जा, शुक्र, फुफ्फुस, खरीश, कालेय, मूत्र, पित्त, अंतड़ी, उच्चार अर्थात मल आदि सब जिनके औषधिपने को प्राप्त हो गए हैं, वे सर्वौषधि प्राप्त जिन हैं, उन सर्वौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। यहाँ लोक में जितनी व्याधियाँ हैं उन सब को स्थापित कर, क्या कहते हैं, इस विश्व में जितनी व्याधियाँ हैं उन सब को स्थापित कर आमर्ष औषधि, खेल औषधि, जल्लौषधि, विष्ठौषधि और सर्वौषधि के एक संयोगादि रूप भंगों की नाना काल संबंधी जिनों का आश्रय करके प्ररूपणा करना चाहिए, क्योंकि विचित्र चारित्र से चाहिए न? चारित्र के चरित्र विचित्र चरित्रेन लद्धिनम, क्योंकि विचित्र चरित्र से लब्धियों की विचित्रता में कोई विरोध नहीं है। यानी अनेक प्रकार के चरित्र से अनेक प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब जो है ना, आमर्ष औषधि, खेल औषधि, जल औषधि, विष्ठ औषधि और सर्व औषधि, ये सब मुनियों की बात है। अब उसको क्या कहते हैं, एक संयोग आदि रूप भंगों की, एक संयोग आदि रूप याद है,
सभी को एक
एक संयोग, दो संयोग, तीन संयोग, चार संयोग ऐसे आ गए। अभी हमने परसों देखे थे ना, उसको एक संयोग आदि रूप भंग कहते हैं। जितने व्याधियां है कि किसी को एक को ठीक करने की पात्रता, किसी को दो को, किसी को तीन की, तो फिर उसके संयोग, नंबर एक और नंबर दस का रोग है, नंबर एक और नंबर नौ का है, नंबर ये दो द्विसंयोगी हो जाएगी, तीन संयोगी, चार संयोगी, जितने हैं अभी लोक में जितनी व्याधियां हैं उतने भंग करना भी, उसमें भी प्रत्येक भंग लेना, फिर द्विसंयोगी, तीन संयोगी, चार संयोगी और सभी मिलकर एक संयोगी भी, पूरा का मिलकर जितनी व्याधियां उन सबको ठीक करने में समर्थ, ऐसा भी कोई लब्धि होगी? ये तो मूल बात, यहाँ जिनों को ही नमस्कार है, जिन में मुनिराज लेना है। अन्य किसी को थोड़ी बहुत इसमें से लब्धि हो तो उसकी बात यहाँ नहीं है, और उनके ऐसे इतनी पावरफुल लब्धियां भी नहीं होगी। देखो विशल्या को जो थी विशिष्ट, उसको जो कुछ प्राप्त था उसको, वो पूर्व भव से उसको विशिष्ट पुण्य के कारण उसका भी वहां भी उसने मालूम है ना, विशल्य की बात नहीं मालूम आपने सुनी है? नहीं सुनी आपने? सुनी है। विशल्य कौन थी? तो जब राम रावण का युद्ध हुआ था और लक्ष्मण मूर्छित हुआ था, तो फिर वो उसको बुलाया गया, विशल्या को क्यों बुलाया गया? तो उसके पास ऐसी कोई रिद्धि थी जन्म से ही कि उसके स्नान का जल है वो, उससे व्याधियां दूर होती थी। तो ये उसके ये क्यों कैसे प्राप्त हुई? तो पूर्व भव में वो राजा की कन्या थी, राजकन्या थी, और कोई उसको विद्याधर उठा के ले गया, विद्याधर उठा के ले गया, परंतु उसके पीछे वो राजा के सैनिक या कुछ पड़ गए, तो उसने उसको कहीं जंगल में गिरा दिया, छोड़ दिया, ऊपर से वो टपककर जंगल में गिर गए। तो 6000 वर्ष तक तो वो जंगल में रही, तो वहीं उसका जो कुछ था। तो अभी उसको ऐसा हो गया कि अभी उसने संलेख ना ली कि मैं इस इतने इतने एरिया के बाहर नहीं जाऊंगी, और उसमें उस समाधि मरण जैसे, परंतु उसमें क्या हुआ, एक अजगर ने उसको मुंह में ले लिया है, नहीं ऐसे उसके, तो आधी वो मुंह में चली गई थी। उसमें क्या हो गया था, उसके पहले किसी ने उसको देख लिया था, वो आकाश से जा रहा था, उसने राजकन्या को देखा था, और फिर उसका पूछा था किसकी कन्या क्या है वो, तो उसने बताया था अपने पिताजी का नाम, तो वो जाके अपने वो उसको पिताजी को ले आया। तो पिताजी आए तो ये आधी तो अजगर के मुंह में चली गई थी, और उन्होंने बांध छोड़ना चाहा उसको, अजगर को मारना चाहा, तो उन्होंने उसने बता दिया कि अभी मैं तो इसके बाहर जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने आजीवन अभी त्याग कर दिया, मैंने तो समाधि मरण ले लिया है, तो आप इसको कुछ यानी मारने की कोशिश नहीं करना। तो इस तरह से उसने वहां समाधि मरण पूर्वक प्राण त्याग दिए। उसको अगले भव में यह ऐसी औषधि उसके प्राप्त हुई, रिद्धि कुछ। किसी किसी को, कोई कोई उसमें से कोई कोई होती है, ऐसी कोई कोई रिद्धियां होती है, और वो भी पूर्व के कुछ विशिष्ट अभी यहाँ संलेखना ली थी। अभी ऐसा तो नहीं कह सकते वो समय दृष्टि थी, क्योंकि वो तो स्त्री नहीं बन सकती, ख्याल है ना? सम्यक दृष्टि होती तो मनुष्य में भी वो तो नहीं आ सकती, और वो स्त्री पर्याय में आई है ना, फिर भी उसने समाधि मरण पूर्वक यानी कैसे शांति से देह छोड़ा।
देखिए आपका जो प्रश्न है कि ये मुनियों के अलावा अन्य भी जो तप करते हैं, जैसे कि हमने रावण को भी तप किया करते हुए देखा था, खरदूषण को भी तप करते हुए देखा था, ये रिद्धियां प्राप्त करने के लिए उनके तो मिलती हैं ये रिद्धियां, लेकिन वो यहाँ जो अपनी बात चल रही है वो जिन जो है उनकी बात चल रही है, और उनको ये रिद्धियां होती है, अन्य को भी हो सकेगी? सभी की सभी होगी नहीं, कुछ उसमें से हो सकती है। हाँ,
नहीं, उसको विशिष्ट चारित्र है ना, अलग अलग उनके जो अलग अलग अभी शुभ परिणाम मिले ना, उसके कारण ऐसे विशिष्ट लब्धियां उनके होती है। वो लब्धि है इसलिए वो महान है ये भी बात नहीं है, फिर भी ऐसी पाई जाती है। और ये लब्धियों को नमस्कार नहीं है उनके वो जीवों को, जिनों को नमस्कार है, उनके जिनत्व को नमस्कार है, लब्धियों को नहीं। नमो मनबलिनम।
देखो तीर्थंकर को आप क्यों नमस्कार करते हैं, उनके वितरागता और सर्वज्ञता को करते हैं क्या, उनके जो 40 मतलब 42 गुण है उनके लिए करते हैं?
तो मनबल रिद्धि युक्त जिनों को नमस्कार हो, 12 अंगों में निर्दिष्ट निर्दिष्ट ने बताए हुए त्रिकाल विषयक अनंत अर्थ व व्यंजन पर्यायों से व्याप्त, यानी अर्थ पर्यायों से और व्यंजन पर्यायों से। मंजूत है आपको याद है अर्थ पर्याय किसे कहना और व्यंजन पर्याय? हाँ, अनंत गुणों की जो पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, और व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण के पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। या दूसरी अपेक्षा से ऐसा भी कथन आता है, अनेक समयों की स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय, ऐसा भी कहीं कहीं उसका असमान जाति पर्याय को भी वहाँ व्यंजन पर्याय कहने में आता है, परंतु यहाँ हम प्रदेशत्व गुण की बात करेंगे। अर्धपंच व्यंजन पर्याय, तो अर्थ और व्यंजन पर्यायों से व्याप्त 6 द्रव्यों का, 6 द्रव्यों में ये होगी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, तो यहाँ हम प्रदेशत्व गुण को ले सकते। निरंतर चिंतन करने पर भी खेद को प्राप्त न होना मनबल है। यह मनबल जिनके है वे मनबली कहलाते हैं। यह मनबल भी लब्धि है क्योंकि वह विशिष्ट तप के प्रभाव से उत्पन्न होता है, अन्यथा बहुत वर्षों में बुद्धिगोचर होने वाला 12 अंगों का अर्थ एक मुहूर्त में चित्त खेद को कैसे न करेगा, अर्थात करेगा ही। उन मनबली ऋषियों को नमस्कार हो। यानी 12 अंगों में जो 6 द्रव्यों के जो अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय से जो बातें बताई है वो बुद्धि में आने पर भी चित्त खेद को नहीं प्राप्त होना, उसकी को मनबल कहा है। चित्त खेद यानी मन में क्षोभ उत्पन्न होना, ऐसे उसको चित्त खेद कहा। नमो वचि बलिनम, वचन बलि ऋषियों को नमस्कार हो। ये ब क्यों लिखते हिंदी वाले? 12 अंगों का बहुत बार प्रतिवाचन करके भी जो खेद को नहीं प्राप्त होता है वह वचन बलि साधु है। सबके महात्म्य से जिसने वचन बल को उत्पन्न किया है वह वचन बलि है, यह इसका अभिप्राय है। उनको विशुद्ध मन वचन व काय से नमस्कार हो। ये खेद को नहीं प्राप्त होने नहीं, इतनी बार बताने पर भी वो फिर दोबारा बताने में उनके कोई वहां खेद नहीं है। नमो काय बलिनम, काय बलि ऋषियों को नमस्कार हो। तीनों लोगों को हाथ की अंगुली से ऊपर उठाकर अन्यत्र रखने में जो समर्थ है वह काय बलि है। तीनों लोगों के पूरे लोक को काय शक्ति चारित्र विशेष से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके बिना वह पाई नहीं जाती। इन काय बल रिद्धि धारकों को नमस्कार हो। नमो खीर सवीनम, सवी चाहिए वो वेलांटी अलग बताइए, वो दीर्घ वी करना उसको, खीर सवीनम, श्रवि का वो सवी हुआ है ना, क्षीरस रवि जिनों को नमस्कार हो। क्षीर का अर्थ दूध है। विष सहित वस्तु से भी क्षीर को बहाने वाला क्षीरस रवि कहलाता है। हाथ रूपी पात्र में गिरे हुए सब आहारों को क्षीर स्वरूप उत्पन्न करने वाली शक्ति भी कारण में कार्य के उपचार से क्षीरस रवि कही जाती है। यानी अन्य कुछ हाथ में पिरोसा है वो भी दूध हो जाता है उसका, उसको क्षीरस रवि कहते हैं। शंका, अन्य रसों में स्थित द्रव्यों का तत्काल ही क्षीर स्वरूप से परिणमन कैसे संभव है? ये अन्य फॉर्म में है ना, वो दूध कैसे बनेगा उसका, ऐसा कहते हैं। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अमृत समुद्र में गिरे हुए विष का अमृत रूप परिणमन होने में कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तियों के समूह से घटित अंजलि पुट में गिरे हुए सब आहारों का क्षीर स्वरूप परिणमन करने में कोई विरोध नहीं है। वह शक्ति जिनके है वे क्षीरस रवि कहलाते हैं, उनको नमस्कार हो। नमो सप्पि सवीनम, यह ऐसा ही वी वहां चाहिए था पहले में, हमने जो करेक्शन किया था ना, सर्पिस रवि जिनों को नमस्कार हो। सर्पिस शब्द का अर्थ घृत है, घी, घृत यानी घी। जिनके तप के प्रभाव से अंजलि पुट में गिरे हुए सब आहार घृत स्वरूप से परिणमते हैं, वे सर्पिस रवि जिन हैं, उनको नमस्कार हो। नमो महु सवीनम, मधुस्रवि जिनों को नमस्कार हो। मधु शब्द से गुड़, खांड और शक्कर आदि का ग्रहण किया है। ये मधु यानी मध नहीं समझना हो, मधुर शब्द है ना, मधुर मीठा, क्योंकि मधुर स्वाद से प्रति स्वाद के प्रति इनके समानता पाई जाती है। जो हाथ में रखे हुए समस्त आहारों को मधु, गुड़, खांड और शक्कर के स्वाद स्वरूप परिणमन कराने में समर्थ है, वे मधुस्रवि जिन हैं, उनको मन, वचन व काय से नमस्कार हो। घृत ने घी जैसा स्वाद हो जाता है। घृत शब्द आपने सुना है ना, घृत सागर भी है, उसके जल का स्वाद भी घृत के समान है। क्षीर सागर, घृत सागर, आपने नाम सुने होंगे, क्षीर सागर नाम सुना है। वहां से कलश भर भर कर लाते हैं, वो बालक तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं ना, क्षीर सागर, वो घृत वाला उसके आगे वाला है, घृत सागर। नमो अमरस वीणम, अमर सवीनम, अमृत स्रवि जिनों को नमस्कार हो। जिनके हाथ को प्राप्त हुआ आहार अमृत स्वरूप से परिणत होता है, वे अमृत स्रवि जिन हैं। यहाँ अवस्थित होते हुए जो देवाहार को ग्रहण करने वाले हैं, उन अमृत स्रवि जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। देवाहार ने देवों के अमृत का आहार होता है, और यहाँ रहकर भी जो अमृत का आहार करते हैं। नमो अक्षिण महानसाणम, पहले ये अक्षिण की बात आई थी, अभी वो इसको बता रहे हैं यहाँ पर। अक्षिण महानस जिनों को नमस्कार हो। यहाँ चूंकि अक्षिण महानस शब्द देशामर्शक है, अतएव उससे वसती अक्षिण जिनों का भी ग्रहण होता है, जिनको भात, घृत व भिगोया हुआ अन्न स्वयं परोस देने के पश्चात चक्रवर्ती की सेना को भोजन कराने पर भी समाप्त नहीं होता है, वह अक्षीण महानस रिद्धिधारक कहलाता है। देखो, अक्षीण महानस और ये दूसरी वसती अक्षीण भी आती है, ये अक्षीण के बाद अभी आई थी पहले भी, मैंने बोला तो ये बाद में बताएंगे अक्षिण का अर्थ। हाँ, किसमें, जिनमें सारे ही रिद्धियां होती है उसमें, मेरे ख्याल से महातप में आई थी बात, हाँ देखो 91 पेज पर 25वें नंबर के सूत्र में महातप रिद्धिधारिक जिनों में आई थी बात, दूसरे लाइन में, दो प्रकार के अक्षिण रिद्धि से युक्त है ना, और सर्वौषधि स्वरूप, सर्वौषधि वो हमने देखे थे उसके, तो ये अक्षिण महानस और अक्षिण वसति, अक्षिण वास वाले, यानी अभी मुनिराज का आहार हुआ, उनको तो ये सब परोस दिया ना सबन, और फिर भी वो बचे हुए, थोड़ा कुछ बचा हुआ, क्योंकि जो हार देने वाले श्रावक है वो क्या करते हैं, अपने लिए बनाते हैं, उसमें से मुनिराज को भी आहार देने की भावना होती है, अनुदिष्ट होता है ना उनका आहार, तो उसमें बचे कुचे में पूरी चक्रवर्ती की सेना भी जिम ले तो भी उसमें बचता है। ये अक्षीण अक्षय पात्र हमने सुना होगा कहीं, वह अक्षीण महानस रिद्धिधारक कहलाता है, जिसके चार हाथ प्रमाण भी गुफा में रहने पर, अब ये वसति के संबंध में अक्षीण क्या है उसको बताते हैं, चार हाथ प्रमाण भी गुफा में रहने पर चक्रवर्ती का सैन्य भी उस गुफा में रह सकता है, यानी एक दूसरे को बाधा किए बिना उसमें ये सब वहां बैठ सकते आराम से। वह अक्षीण वास रिद्धिधारक है, एक अक्षीण महानस और एक अक्षीण वास, उन अक्षीण महानस जिनों को नमस्कार हो। शंका, इन शक्तियों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? समाधान, इसी सूत्र से उनका अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ ये सूत्र चला आ रहा है, वो अन्यथावादी ने वो खोटा क्यों कहेंगे, यह है नहीं और बस बता देंगे, ऐसी बातें तो है ही नहीं है। तो अभी हमने जितने रिद्धियों के नाम आदि देखे है और उसमें जब जो विशेषताएं देखी है तो ऐसा होता है, इसीलिए तो उन्होंने बताया है। नमो लोए सौव सिद्धायतनानम, लोक में सब सिद्धायतनों को नमस्कार हो। सब सिद्ध इस वचन से पूर्व में कहे हुए समस्त जिनों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिनों से प्रतकभूत देश सिद्ध व सर्वसिद्ध पाए नहीं जाते। सब सिद्धों के जो आयतन हैं वे सर्व सिद्धायतन हैं। क्या कहते हैं? सभी सिद्धों के जो आयतन हैं वे सर्व सिद्धायतन हैं। उसमें अभी तक जितने जिन कहे हैं उनका तो सभी का समावेश उसमें आ ही गया। सिद्ध शब्द से पूर्व के सभी जिन आ गए। अभी उसके आयतन यानी स्थान, सभी सिद्ध में कौन आए? अभी तक जितने जिन बताए वो सब आ गए, और उनके स्थान कौन करें? इससे कृत्रिम अकृत्रिम जिन गृह, कृत्रिम तो यह अब जो हम बनाते हैं वे कृत्रिम हो गए, अकृत्रिम हमने देखे थे ना वो भूगोल शिविर में कहाँ कहाँ अकृत्रिम होते हैं। जिन प्रतिमा, ये जिन प्रतिमा अकृत्रिम चैत्यालय तो होते ही है, परंतु कितनी जगह केवल जिन प्रतिमाएं होती है वो भी अकृत्रिम है, बहुत सी जगह होती है, अनेक द्वीपों में होती है, तोरणों पर होती है, वेदिकाओं पर होती है, कितने हमने हा? हाँ वो चैत्य वृक्ष आदि भी होते हैं ना, चैत्य वृक्ष कहते हैं, जहाँ व्यंतर आदि रहते हैं वहाँ चैत्य वृक्ष, वृक्षों को चैत्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके शाखाओं पर भी छोटे छोटे चैत्यालय भी होते हैं, और वो वृक्षों के नीचे वहाँ भी अनेक मूर्तियाँ होती है, उनके सामने मानस स्तंभ आदि भी होते हैं। हमने वो गंगा नदी जहाँ गिरती है ऊपर से सम, तो उसके नीचे भी वहाँ एक जिन बिंब पाया जाता है, गंगा नदी है, सिंधु नदी है, तो ये ऐसे इतने जगह ये सर्वत्र ये जिन बिंब है, तो ये सारे ही जिन प्रतिमाएं अकृत्रिम है। तथा ईशत प्रागभार नाम सुना सुना सा है कि नहीं? आठवीं पृथ्वी जिसके सेंटर में सिद्धशिला है, ऊर्जयंत, अभी इसका नाम हमने अभी अभी देखा था, ऊर्जयंत का अर्थ क्या है? गिरनार, गिरनार पर्वत। चंपापुर व पावानगर आदि क्षेत्रों व निषिधिकाओं का भी ग्रहण करना चाहिए। निषिधिकाएं ने जहां से समाधि लेते हैं ना, उसको निषिधिकाएं बनाते हैं ना, वो उसके चरण वगैरह, ऐसा मुझे लगता है निषिधिका कहते हैं ना उसको, क्या आप क्या कहते हैं मालूम नहीं? नहीं नहीं, निषिधिकाएं यानी वो मुनिराज जहाँ से समाधि लेते हैं ना, उनके वो चरण पादुका बनाते हैं ना इसे, उसको निषिधिका कहते हैं। अब आगे नमो हो गया, समय चला, चलो बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक।